एक हफ्ता बीत चुका था। इस दौरान एक दो बार फोन पर माधव और राधिका की थोड़ी बहुत बातें भी हुई थी, जिससे स्थिति कुछ सुधरी जरूर थी, पर अब भी एक अजीब सी झिझक सी थी, वो भी सिर्फ राधिका की ओर से। खैर, आज राधिका स्कूल से लौटते हुए माधव के रेस्टोरेंट पहुंच गई थी, पर इस बात से पूरी तरह से अनजान माधव को खबर ही नहीं हुई। राधिका ने अपनी स्कूटी उसके रेस्टोरेंट के बाहर रोकी और पर्स से फोन निकालकर उसे फोन लगा दिया। कुछ ही रिंग्स जाने के बाद उसने कॉल भी रिसीव कर ली। हेलो राधिका, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त कैसे फोन किया आपने?
माधव को ये वक्त कुछ ठीक नहीं लगा था, क्योंकि उनकी अब तक बातें सिर्फ रात को ही हुई थीं और आज राधिका ने दोपहर में उसे फोन कर दिया था। बस यूं ही मन किया मेरा कि आपको थोड़ा परेशान किया जाए, तो कर दिया फोन। क्यों, आपको मेरा इस वक्त फोन करना पसंद नहीं आया क्या? कहीं बात बिजी तो नहीं थे और मैंने बेवजह इस वक्त फोन करके आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? राधिका ने पहले सौम्यता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उससे सवाल कर लिया। राधिका की बात पर माधव ने तुरंत ही हड़बड़ाते हुए एतराज जताया,
नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
अच्छा, मतलब आप फ्री हैं?
जी, आप ये समझ सकती हैं?
माधव का जवाब सुनकर राधिका एक बार फिर मुस्कुरा दी। ये तो बढ़िया हो गया, अब जब आप फ्री ही हैं तो जरा अपने रेस्टोरेंट के बाहर तो आइए।
बाहर क्यों?
माधव ने चौंकते हुए सवाल किया, जिस पर राधिका ने झूठ मूठ की नाराजगी जताई।
सारे सवाल क्या फोन पर ही करेंगे, या आप बाहर भी आएंगे?
मतलब आप बाहर हैं? माधव ने सशंकित स्वर में सवाल किया। आइए तो पता चल जाएगा, इतना कहकर राधिका ने फोन ही काट दिया। राधिका के अंदाज आज कुछ बदले बदले से लगे उसे। जिस तरह से आज वो उससे बात कर रही थी, उसमें पहले वाली राधिका की झलक नजर आ रही थी। माधव खुद ही खुद में मुस्कुराया और रेस्टोरेंट के किचन से निकलकर गेट की ओर बढ़ गया। जैसा कि उसे अंदाजा था, गेट के साइड में अपनी स्कूटी के पास ही खड़ी थी वो।
आपने आने से पहले बताया नहीं ना, मैंने कहा था बताने को।
माधव ने उसके पास आते हुए नाराजगी जताई और जवाब में राधिका के लबों पर सौम्य सी मुस्कान बिखर गई, जिसे उसने जल्दी ही छुपाया और मुंह बनाते हुए बोली, मैं आपको सरप्राइज देने आई थी, अगर आपको नहीं पसंद आया तो वापस चली जाती हूँ, कल आऊंगी बताकर। आखिरी के शब्दों पर उसने खास जोर दिया था और चंचल मुस्कान उसके लबों पर थिरक गई। जाने कितने बरसों बाद आज ये मुस्कान उसकी तलाश में यहां तक पहुंची थी। ये पहले उसके स्वभाव का अहम हिस्सा हुआ करता था, पर जिंदगी की दौड़भाग में सब कुछ पीछे छूट गया था। आज जब माधव ने यूं अपनापन दिखाते हुए नाराजगी जताई, तो अनायास ही मन शरारत पर उतर आया और उसने अपने शब्दों से उसे छेड़ दिया था। माधव उसका ये व्यवहार देखकर कुछ हैरत में पड़ गया। उसको यूं एकटक खुद को देखता पाकर राधिका ने भौं उछालते हुए सवाल किया, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? आज आप कुछ बदली बदली सी लग रही हैं। माधव ने अपनी निगाहों को उस पर से हटाते हुए उलझन भरे स्वर में कहा। राधिका ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। मतलब कैसी बदली बदली सी लग रही हूँ? मैंने तो प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई जो पहचान ना हो। चेहरे पर कुछ लगाया भी नहीं, रोज जैसी ही लग रही हूँ शायद से। तो इतना कहते हुए उसने पहले अपने चेहरे को अपनी हथेली से टटोला, फिर स्कूटी के मिरर में खुद को देखने लगी। मैं फिजिकल अपीयरेंस या चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ। माधव के शब्द राधिका के कानों में टकराए तो उसने तुरंत ही निगाहें घुमाकर उसे देखा। तो आंखों से उसने सवाल किया और जवाब में माधव ने गहरी निगाहों से उसे देखा। आपका व्यवहार कुछ बदला सा लग रहा है मुझे, जैसे आप बहुत खुश हों। इससे पहले जितनी भी बार आपसे मेरी मुलाकात हुई या बात हुई, आपके व्यवहार में एक खिंचाव, झिझक और नाराजगी का आभास होता था, पर आज लग रहा है जैसे आप वो पहले वाली ही राधिका बन गई हैं, जो बेझिझक कुछ भी बोल जाती थी, जो खुलकर मुस्कुराया करती थी। माधव बोल रहा था, राधिका की निगाहें भी उसी पर ठहरी थीं, पर आंखों के आगे आज लंच का दृश्य उभर आया था और कानों में आहाना के कहे शब्द गूंज रहे थे। राधिका, ये तो तुम्हारी बेचैनी और परेशानी है ना, इसका हल खुद तुम्हारे पास है। तुम खुद से ही डर रही हो। डर रही हो कि कहीं फिर से माधव जी के लिए तुम्हारे मन में एहसास ना पनप जाए। डर रही हो कि कहीं तुम उनके साथ घुलने मिलने लगी तो उन्हें तुम्हारे दिल का हाल ना पता चल जाए। डर रही हो कि कहीं पिछले बार जैसे तुम्हारा दिल ना टूट जाए, इसलिए खुद को उनसे दूर रखने की कोशिश कर रही हो, और यही तुम्हारी बेचैनी की अहम वजह है। तुम हर पल खुद से ही लड़ रही हो, जबकि तुम्हारा दिल गलत नहीं है, बस तुम्हारा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारी दोस्त हूँ और एक लड़की भी, इसलिए समझ सकती हूँ तुम्हारे मन के भावों को, और दोस्त होने के नाते ही ये एडवाइस दे रही हूँ कि खुद को और माधव जी से अपने इस रिश्ते को अतीत की बेड़ियों से आज़ाद कर दो। अपने मन को आज़ादी दो, स्वच्छंद होकर खुले आकाश में उड़ने की, इन फीलिंग्स को महसूस करने की। उनके साथ खुलकर रहो, जो तुम हो वो बनकर रहो। आगे क्या होगा इसकी फिक्र वक्त पर छोड़ दो, और आज जो लम्हे तुम्हारे हिस्से आए हैं उन्हें खुलकर जियो। राधिका, ये जो हमारा दिल है ना, उसे जितना हम अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही हमसे बगावत करता है। तुम जितना उसे माधव जी से दूर रखने की कोशिश करोगी, खुद को उतना ही उनके करीब पाओगी, इसलिए बेकार की कोशिशों को अब रहने दो। सब कुछ वक्त पर छोड़कर बस वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है।
तुम्हें भी खुश रहने का, जिंदगी जीने का हक है राधु, और तुमसे ये हक कोई नहीं छीन सकता, खुद तुम भी नहीं। क्या हुआ जो पहले तुम्हारा और माधव जी का मिलन नहीं हो सका? क्या गलत है इसमें अगर आज भी वो तुम्हारे दिल में बसते हैं? इंसान हो तुम भी, हक है तुम्हें बसंत करने का, किसी को प्यार करने का, मोहब्बत के उन खूबसूरत एहसासों को जीने का। कल क्या होगा इसमें अपना आज मत बर्बाद करो। आज तो माधव जी तुम्हारे साथ हैं, तो उनके साथ को खुलकर महसूस करो। वो तुम्हारे जिंदगी के अकेलेपन को दूर कर सकते हैं, और अगर आगे चलकर बात आगे बढ़ती है तो इसमें भी तो कोई हर्ज नहीं है। शायद भगवान ने तुम्हारे रिश्ते को ये दूसरा मौका दिया हो, तो इस मौके को यूं ही हाथ से मत जाने दो। बस इतना याद रखो कि अगर ये पल बीत गए तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे, और आगे चलकर तुम पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकोगी। खुद के साथ इतनी नाइंसाफी करके कभी खुश नहीं रह सकोगी, और तुम्हारे साथ साथ शायद माधव जी से भी उनके हिस्से की खुशियां छिन जाएंगी। राधिका जी, माधव ने जरा तेज आवाज में उसे पुकारा और साथ ही उसके कंधे को पकड़कर हिलाया, और राधिका चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई। आंखें बड़ी बड़ी किए वो माधव को देखने लगी। कहाँ खो गई थी आप? कहीं नहीं, वो बस कुछ सोचने लगी थी, राधिका ने संभलते हुए जवाब दिया। फिर पल भर ठहरते हुए उसने पूछा, क्या आपको ये बदलाव पसंद नहीं आया? मुझे क्यों पसंद नहीं आएगा, मुझे तो आज आपको पहले जैसे बोलते और मुस्कुराते देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही रिश्ता तो चाहता था मैं आपके साथ, जिसमें आप सहज रहें, जिसमें बस दोस्ती की मिठास छलके। माधव का जवाब सुनकर राधिका मुस्कुरा दी। चलिए अंदर। माधव ने दरवाजा खोला तो राधिका रेस्टोरेंट के अंदर चली आई। दोपहर बीतने को थी, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी। वहां कुछ टेबल भरे थे तो कुछ खाली थे। राधिका, कहाँ चलेंगी आप? यहीं बैठना पसंद करेंगी या हमारे कैबिन में चलेंगी? माधव का सवाल सुनकर राधिका, जिसकी निगाहें अभी चारों ओर घूम रही थी, अब वो पलटकर उसे देखने लगी। मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगी, आप देख लीजिए कि आप कहाँ मेरे साथ बैठने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। राधिका ने सहजता से जवाब दिया, जिसे सुनकर माधव ने चुपचाप उसे दूसरी ओर चलने का इशारा कर दिया, जहां उसका छोटा सा कैबिन बना हुआ था। ये देखकर राधिका भी सिर हिलाते हुए उस दिशा में बढ़ गई। राधिका, क्या लेंगी आप?
कुछ नहीं, पेट भरा हुआ है मेरा, वो तो बस आपने बुलाया था इसलिए चली आई। अच्छा, आप बस 5 मिनट यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ। इससे पहले कि राधिका कुछ कहती, माधव वहां से जा चुका था। राधिका, जिसने बोलने के लिए मुंह खोला था, उसके शब्द गले में ही रह गए। उसने बुरा सा मुंह बनाया और आसपास नजरें घुमाने लगी। कुछ देर बाद माधव ने वापस वहां कदम रखा और ट्रे उसके सामने रखते हुए बोला, ये ट्राई कीजिए। राधिका, जिसकी निगाहें माधव पर ठहरी थीं, उसने निगाहें झुकाई तो नजर ट्रे में रखे बाउल पर गई, जिसमें हलवे जैसा कुछ नजर आ रहा था। ये किस चीज का हलवा है? राधिका ने सवालिया निगाहें उसकी ओर उठाई और आंखों से ही सवाल किया, जिसे समझते हुए माधव मुस्कुराते हुए चेयर लेकर उसके सामने बैठ गया। लौकी का हलवा है, आज की स्पेशल डिश में शामिल किया है, खाकर बताओ कैसा बना है। लौकी का हलवा? राधिका ने मन ही मन दोहराया, फिर स्पून लेकर थोड़ा सा हलवा टेस्ट किया। हलवा तो जैसे उसके मुंह में घुल गया था, उसकी मिठास उसकी जुबान पर ठहर गई। डिलिशियस, सब कुछ एकदम परफेक्ट है इसमें, इतना अच्छा तो मुझसे भी नहीं बनता। उसकी जुबान के साथ साथ आंखें भी प्रशंसा कर रही थीं। चलिए, आपको पसंद आया तो सारा आपके हवाले, आप नहीं खाएंगे? राधिका उसकी ये बात सुनकर चौंक गई, जबकि माधव ने सहजता से इनकार में सर हिला दिया। मीठा कुछ खास पसंद नहीं है मुझे, आप खाइए, पर कम से कम एक बाइट तो खाइए। आपने ही तो कहा था कि हमारी दोस्ती की मीठी सी शुरुआत करेंगे, तो दोस्ती तो दोनों की है, तो मीठा भी तो दोनों को खाना चाहिए। राधिका के दबाव डालने पर माधव ने भी थोड़ा सा हलवा चख लिया। राधिका मजे से स्वाद ले लेकर हलवा खाने लगी। अब तक अपने ही हाथ का खाना खाती थी, आज किसी और के हाथ का स्वाद चखा तो एक संतुष्टि सी नजर आई उसके चेहरे पर। आपके हाथ में स्वाद है, मैंने भी बहुत बार लौकी का हलवा बनाने की कोशिश की, पर इतना अच्छा कभी नहीं बना। मम्मी बनाती थी तब बहुत टेस्टी बनता था, और उसके बाद मैं अब इतना स्वादिष्ट हलवा खा रही हूँ। वैसे आपको कुकिंग का शौक कैसे चढ़ा? मतलब लड़कों को तो आमतौर पर रसोई से दूर ही रखा जाता है, खासकर हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में तो ये माना जाता है कि घर और रसोई का काम लड़कियों का है, मर्द इन सब कामों के लिए नहीं बना, वो तो बाहर जाकर कमा कर लगाएगा। राधिका पहले तो हलवा खाते हुए तारीफ पर तारीफ किए जा रही थी, आखिरी की बात बोलते हुए उसकी सवालिया निगाहें माधव की ओर उठ गईं। अपनी मम्मी से सीखा है मैंने, भाई बहनों में मैं ही सबसे बड़ा था, तो रसोई के कामों में उनकी मदद करता था, उन्हें खाना बनाते देखता था, और वहीं से इसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जैसे जैसे बड़ा होता गया, हालात ऐसे हुए कि खाना भी बनाना पड़ा। खाना बनाना मुझे पसंद भी था, तो मैं भी मौका मिलते ही रसोई में पहुंच जाता, और जितनी चीजें घर में मौजूद होती उसी से हर बार कुछ नया और बेहतर बनाने की कोशिश करता। सोचा तो था कि आगे चलकर प्रोफेशनल सीखूंगा, पर घर की जिम्मेदारियों ने मौका ही नहीं दिया, तो काम कर करके अपने एक्सपीरियंस से ही सीखने लगा, और अब रिजल्ट आपके सामने है। बहुत स्ट्रगल किया ना आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए,
राधिका के लहजे में अजीब सी उदासी सी झलक रही थी, जबकि माधव अब भी मुस्कुरा रहा था। इस दुनिया में सबको अपने हिस्से का संघर्ष करना ही पड़ता है। बस किसी की किस्मत में संघर्ष ज्यादा होता है तो किसी में कम, पर जो किस्मत और जिंदगी से हार नहीं मानता वो अपनी मंजिल को पा ही लेता है। जैसे आप, आई एम श्योर आपके लिए भी ये सफर आसान नहीं रहा होगा। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको भी कई परेशानियों का सामना करना ही पड़ा होगा। माधव ने तो आम से अंदाज में ये बात कही थी, पर राधिका के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए थे। मन अतीत की गहराइयों में कहीं खोने लगा था, पर राधिका ने वक्त रहते खुद को संभाल लिया और हौले से मुस्कुराते हुए उसकी बात पर सहमति जाहिर कर दी। टू बी कंटिन्यूड।